ये जो त्यौहार है ये बहुत प्राचीन है। भगवान जगन्नाथ की जब स्थापना हुई तो उसके साथ ही उनकी सेवा की जो पद्धति है वो भी बनी, और जितने भी त्यौहार हैं और जितने भी विशेष कार्यक्रम हैं वो सब लिखित रूप में उस समय आ गए थे। तो ओढ़न षष्ठी का भी जो दिन है ये निश्चित है। तो भगवान जगन्नाथ इस दिन गर्म कपड़े पहनते हैं, तो ठंडी का जो है ये पहला दिन जगन्नाथ जी पहला दिन मानते हैं। तो आज हमने सवेरे चर्चा की थी कि हमारे मंदिर में हम देखते हैं जितने भी राधा पाठ श्री गौरताई के जो भी अर्चा विग्रह हैं, तो आज पहला दिन नहीं है, कई दिन पहले से ही उनको गर्म वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। लेकिन आज के दिन ओढ़न षष्ठी जो हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है ये केवल इस बात की सूचना देने के लिए है कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को जो है आज के दिन से शुरू होता है गर्म कपड़े पहनाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के दिन हम लोग शुरू करें, क्योंकि हम लोग पहले से ही गर्म कपड़े पहन रहे हैं। तो अगर हम गर्म कपड़े पहन रहे हैं अपने लिए, तो हमें भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। तो भगवान जैसे गीता में कहते हैं यत करोषि, कि तुम जो कुछ करते हो तत् करोषि मम अर्पणम्, वो मेरे अर्पण करो। इसका मतलब ये है कि जब आप गर्म कपड़े पहनते हो तो मुझे भी गर्म कपड़े पहनाओ। यत करोषि यद स्नासि, जो कुछ खाते हो तत् करोषि मम अर्पणम्, जो कुछ तुम खाते हो मुझे खिलाओ, है ना। तो ये जो है न्याय नहीं है ऐसा कि हम लोग गर्म कपड़े पहने और भगवान गर्म कपड़े ना पहने। तो ये लीला भी आज हमने सवेरे पढ़ के सुनाई थी, राजापुर के जगन्नाथ, राजापुर में जो जगन्नाथ जी हैं, तो वहाँ भी भक्तों ने उसी प्रकार का नियम बनाया था कि ओढ़न षष्ठी के दिन ही जगन्नाथ जी को कपड़े पहनाएंगे। और ठंड तो बहुत पहले से आ गई है ना, और पुजारी हैं वो खुद गर्म कपड़े पहनते हैं और जगन्नाथ जी को गर्म कपड़े नहीं पहना रहे। तो ओढ़न षष्ठी के पहले ही पुजारी को सपना आया, तो पुजारी सोते हुए सपना देख रहा है, और सपने में क्या देखा कि वो सो रहा है, पुजारी सो रहा है, और सपने में भी उसने देखा कि वो सो रहा है, और किसी ने दरवाजे को खटखटाया, किसी ने दरवाजा खटखटाया तो पुजारी उठा, दरवाजा खोला, तो सपने में पुजारी उठा। पुजारी तो सपना देख रहा है, तो पुजारी थोड़ी उठा, पुजारी तो सपना देख रहा है, और सपने में क्या देखा कि वो सोते सोते उठा, किसी ने दरवाजा खोला, और पुजारी ने दरवाजा खोल खटखटाया, तो पुजारी ने दरवाजा खोला, तो क्या देखा कि जो राजापुर के जगन्नाथ हैं तो छोटे जो अर्चा विग्रह हैं जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, तो वह जमीन में लेटे हुए हैं और कांप रहे हैं, ठंड से कांप रहे हैं। और क्या कहते हैं पुजारी से कि तुम क्या समझते हो कि हमें ठंड नहीं लगती, ये कहा। तब पुजारी की आँख खुल गई और उसको जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पुजारी को पहले से लग रहा था कि भगवान को ठंड लग रही होगी, लेकिन वो नियम उन्होंने जो है सोचा था कि इस नियम के अनुसार हमें भगवान को आज के दिन गर्म कपड़े पहनाने चाहिए, लेकिन भगवान ने ये संकेत किया कि तुमको ठंड लग रही है तो मुझे भी ठंड लग रही है, तुम अपनी रक्षा करते हो ठंड से तो मेरी भी रक्षा करो ठंड से। तो इस तरह से आज के दिन जो है भगवान को जगन्नाथपुरी में गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं,
लेकिन बहुत सूक्ष्म नियम है जगन्नाथ पुरी में, सेवा के बड़े सूक्ष्म नियम है और बहुत विचार किया जाता है वहाँ पर, शुद्धि का इतना विचार किया जाता है। अगर जरा भी अशुद्धि हो जाती है तो वो चीजें जो है अलग कर देते हैं भगवान के भोग में भी जो है, अगर कोई कुछ निकल आता है, कुछ अशुद्ध चीज निकल आती है तो पूरा का पूरा जो है अलग कर देते हैं। तो बहुत वहां पर जो है शुद्धता के नियम है। लेकिन माण का जो वस्त्र है वो जगन्नाथ जी को पहनाया जाता है, तो वो माण का जो वस्त्र है वो प्राचीन काल की विधि है। माण का जो वस्त्र है ये प्राचीन काल में वस्त्र की जो सिकुड़न है उसको दूर करने के लिए माण का प्रयोग किया जाता था। अभी तो हम लोग प्रेस करते हैं कपड़ों को, कपड़े प्रेस करते हैं तो सिकुड़न नहीं रहती है, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें सिकुड़न वैसे नहीं रहती है, प्रेस ना करो तो भी सिकुड़न नहीं रहती, जैसे टेरिकॉट के कपड़े हैं। लेकिन पहले तो सब कपड़े सूती ही होते थे, पहले तो कपड़े सूती ही होते थे और सूती कपड़ों में हमेशा सिकुड़न होती है। तो माण लगाया जाता है, माण लगाने से कपड़ा जो है कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है और उसकी सिकुड़न नहीं रहती। लेकिन जो लोग ज़्यादा विचार करते हैं तो वे जो है माण को अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि माण होता क्या है, वास्तव में चावल है जो कि पकाया गया, चावल जो पकाया जाता है फिर उसको पानी में डालते हैं तो चावल का जो 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 ऊपर का जो हिस्सा है वो पानी में घुल जाता है और पानी जो है वो मोटा हो जाता है। तो चावल चूँकि अन्न है और अन्न कोई अगर पकाता है तो उसमें बहुत विचार होता है कि अन्न को पकाते समय कोई व्यक्ति कैसे विचार कैसे विचारों को सोचता है, तो वो विचार उसमें आ जाते हैं। तो वैसे तो विधि यही है कि अन्न खाया नहीं जाता है, अन्न को खाने में जो है दोष होता है कि किसी व्यक्ति ने जो है कुछ अन्न पकाया और उस समय उसके जो भी विचार थे तो उसमें आ गए, तो जब खाएगा वो तब उसके अंदर भी वो विचार आ जाते हैं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा विचार नहीं है कि भाई छुआ ना जाए या पहना ना जाए, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने ऐसा विचार किया कि उसको जो है अशुद्ध मान करके नहीं छूते हैं। लेकिन वैसे इतना कोई विशेष बात नहीं है इसमें कि माण को ना छुआ जाए, छूने से कुछ दोष नहीं होता है। तो जगन्नाथ जी पहनते हैं तो पुंडरीक विद्यानिधि ने ये विचार किया कि भाई जो बहुत शास्त्रों के विद्वान हैं वे तो मानते हैं कि नहीं पहनना चाहिए माण का कपड़ा, और माण का जो कपड़ा छूने से भी दोष हो जाता है, अगर आपने छुआ है तो फिर हाथ धोना चाहिए आपको, तो फिर यहाँ पर जो पुजारी लोग हैं पंडे हैं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह की बातें करी। और जब स्वरूप दामोदर ने कुछ ऐसी बातें बताई कि नहीं नहीं निंदा नहीं करना चाहिए, हम लोग नहीं जानते हैं जगन्नाथ जी को अगर ऐसा प्रिय है तो ऐसा होने दो, तो पुंडरीक विद्यानिधि जो है कुतर्क करते हुए फिर काफ़ी निंदा की, और इस प्रकार से फिर जगन्नाथ जी ने उनको दंड दिया। और ये विशेष कृपा, इसमें विशेष कृपा ये भी है कि सपने में जो दंड दिया वो भी जो है जागते जागने पर वो बना रहा है, तो ये आश्चर्य है। सपने में आपको कोई चीज़ मिलती है, मानिए आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए सपने में, तो जागने में क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने जो उनको पीटा, उनको पीटा तो जागने पर वो पूरे दाग गाल में जो है निशान है और गाल फूले हुए हैं, पूरे दाग दिखाई दिए, है ना। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। स्वरूप दामोदर बहुत प्रसन्न हुए जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा देख करके। तो भक्त लोग जो है भगवान की ये भी जो है एक विशेष कृपा मानते हैं कि उन्होंने ये शिक्षा दंड दिया और बहुत थोड़े में निकाल दिया। अपराध तो ऐसा था कि इसे नरक की प्राप्ति होती और भगवान किसी को दंड नहीं देते हैं, तो यमराज दंड देते हैं। और यमराज दंड देते हैं तो फिर करोड़ों करोड़ों गुना दंड होता है, लेकिन भगवान ने दंड दिया तो बहुत थोड़े में निकल गया, है ना। तो इस तरह से जो है पंडित विद्यानिधि ने माना कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है और हमारे लिए भी बहुत बड़ी ये जो है इसमें शिक्षा है कि हम बहुत सावधान रहें, कुछ भी मुंह में आता है तो बोल देते हैं, है ना। ये हमें सोचना चाहिए कि किसी के विषय में, विशेष रूप से भक्तों के विषय में, वैष्णवों के विषय में ऐसा नहीं है जो मुँह में आए सो बोलते हैं, है ना। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर प्रश्न करना चाहिए, अपने संदेह दूर करना चाहिए, और हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे से अपराध ना हो। मैं किसी वैष्णव की निंदा तो नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे मुँह से कोई निंदा की बात अगर निकलने वाली हो तो पहले से मुझे पता चल जाए और मैं अपना मुँह बंद कर लूँ कि मैं किसी वैष्णव की निंदा ना करूं। तो शिक्षा मिलती है हमें आज की इस लीला से। धन्यवाद। ओरण षष्ठी महोत्सव की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थी ललिता विशाखा गौर निता इसी तनाम लक्ष्मण।